نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة الكهف آیت نمبر 60. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضر کا قصہ شروع ہوتا ہے جو 15 پارے کے اینڈ سے لے کر 16 پارے کے شروع میں جائے گا. ہم تھوڑی سی اس پہ بات کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس واقعے کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو دنیا ہے اس میں ہر وقت مختلف قسم کے واقعات پیش ہوتے ہیں. میں اور آپ اگر اپنی زندگی کے اوپر پیچھے مڑ کر دیکھیں تو بہت سے ایسے حالات سے ہم گزرے ہوں گے کہ جن کی حکمت ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آئی. بچپن میں کبھی اسکول جانے کی حکمت سمجھ آئی تھی؟ کبھی صبح اٹھ کے 7 بجے روتے منہ کے ساتھ بچے کو آنکھیں بند کے ساتھ ناشتہ کروانے کی حکمت سمجھ آئی تھی؟ لیکن یہ حکمتیں کب سمجھ آتی ہیں؟ جب ہم اس کا پھل پاتے ہیں. اسی طرح انسانوں کی زندگی میں کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسے انیوژل واقعات ہوتے ہیں کہ وقتی طور پر ہم اس کی حکمت سمجھ نہیں پاتے. ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ زیادتی ہو رہی ہے یا اس کا کچھ ہمارے ساتھ معاملہ خراب ہوگا, لیکن اس کی حکمت بعد میں بہت ہی اچھے طریقے سے جب سمجھ آتی ہے تو اللہ کا شکر آتا ہے. اسی لیے اس واقعے میں جو ہم ابھی حضرت موسیٰ اور حضر کا پڑھنے والے ہیں اس میں چند واقعات ہیں کہ جن کے اندر ہمیں ظاہر سمجھ نہیں آتا. ہم واقعہ شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد بات کریں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام جو نبی بننے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے طالب علم بنایا. یہ نوٹ کیجیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طالب علمی کے مینر سکھائے, علم کی دولت کی قدر کرنا سکھایا, پھر رسالت کے کام پہ چنا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک انسان خود کسی خاص سیٹ اپ سے گزرتا نہیں ہے وہ دوسروں کو وہ سنا نہیں سکتا. اور موسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے اس وقت ان کو نبوت مل گئی تھی تو ابھی تورات نہیں ملی تھی, یہ بھی ممکن ہے, لیکن ان کے اندر اتنی عاجزی تھی کہ کسی نے پوچھا کہ موسیٰ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے تو موسیٰ نے اپنا نام لے دیا اس گمان کے مطابق کہ واقعی کوئی نہیں تھا. اور لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہ لگی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں جگہ جائیے, وہاں ایک اور شخص ہے اور وہ آپ سے بھی بڑا عالم ہے. تو بجائے اس کے غصے میں آتے اور ناک منہ چڑھاتے, کیا ضرورت ہے, مجھے سب آتا ہے, میں تو پڑھاتا بھی ہوں, مجھے تو اتنے لوگ جانتے ہیں, دس اینڈ دیٹ, میرے تو گھر کے آگے گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں, اس کی بجائے موسیٰ نے کہا اچھا میرے سے زیادہ کوئی جانتا ہے تو نو پرابلم, میں چلتا ہوں. جیسے سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے, تو یاد رکھیے وہ علم والا ہی اصل علم والا ہے جس کے اندر مزید علم حاصل کرنے کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے. اور جب آپ دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ علم بھی آپ کا ہی ہو جاتا ہے, اور آپ تعصب کے مارے صرف اس رونت میں نہیں سنتے کہ ہاں ہم تو بہت بڑے ہیں اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ چونکہ ہم پڑھاتے ہیں تو ہم پڑھنے چلے گئے تو لوگ سوچیں گے ہمیں کچھ نہیں آتا. سمجھ لیجئے یہ کم علمی کی باتیں. علم جتنا بڑھے گا آپ کو اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی سیکھنے میں خوشی ہوگی, اور کم علم والا اکڑے ہوئے کپڑے کی طرح تھوڑا سا علم کچا پکا دوسروں کو دینا تو پسند کرتا ہے, لیکن ساؤنڈ نالج لینا اس کو اپنی انا کے خلاف لگتا ہے. تب موسیٰ علیہ السلام کا جب خضر سے معاملہ پڑا تو وہ یہ ساری چیزیں جو تھی اس میں آئیں گی. آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 60 سے تھوڑا سا ترجمہ پڑھ کے پھر بات کریں گے, بلکہ میں چاہوں گی کہ زیادہ ترجمہ اکٹھا پڑھ لیں تاکہ پھر اس میں سے ہم ایک سٹریچ میں اپنے لیے عمل کی باتیں لیتے جائیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَمْضِيَ حُقُبًا. ذرا ان کو وہ قصہ تو سنائیے جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا, جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں, ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا. بس جب وہ اس کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے, وہ اس طرح نکل کر دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو. آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ, آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے. خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا, جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی. پھر وہ اپنے نقش قدم پر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے اتنے حصے میں بہت ساری باتیں ہیں. پہلی بات دیکھیے کہ یہ واقعہ موسیٰ کی رسالت سے پہلے کا ذکر ہے. اس میں نبوت تو ملی ہو سکتی ہے لیکن رسالت کب ملی تھی؟ جب تورات ملی. کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ بعد میں موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ ایک بگڑی ہوئی قوم سے پڑھنے والا تھا جن کو سوال بہت کرنے کی عادت تھی, تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک ٹریننگ سیشن رکھا جس میں کوسچن مینجمنٹ سکھائی. क्योंकि यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को भी उनके सवालों के कोई भरपूर जवाब नहीं मिल रहे और उनके इस टीचर जो है वो बहुत ही डिस्करेजिंग बिहेव करते हुए दिखते हैं, लेकिन असल में हर सवाल का जवाब दिया नहीं जाना चाहिए, वरना बाज़ दफ़ा फायदे से ज्यादा नुकसान होता है, स्टूडेंट का जहन इधर से उधर पलटने लगता है, तो लिहाजा दिखाए। दूसरी बात है कि चूंकि मूसा नबी बनने वाले थे और अल्लाह ताला अंबिया कराम को अंदर की हिकमतें भी सिखा देते हैं बाज़ चीज़ों की, ताकि लोगों को वो जो बात कहे शरह सदर से दे। ये बिल्कुल ऐसे कि जैसे हम घड़ी को देखते हैं तो हम ऊपर से देखते हैं उसकी सुई किधर है, 6 पे, 7 पे, 8 पे, और वो किस रंग की है, उसका स्टेप किस रंग का, दैट्स इट। लेकिन जब आप उस घड़ी को किसी मैकेनिक को देंगे तो वो इसको खोल के अंदर के पुर्जे चेक करेगा, तो जब अंदर पता चल जाता है तो बड़ा बीमारियां और खराबियां नजर आती हैं। इसी तरह अंबिया कराम को लोगों के अंदर की बुराइयां पता होनी चाहिए। और आज भी याद रखिए, वो दाई दीन, वो दीन की बात करने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता जो लोग क्या सोच रहे हैं इसको जहन में रख के बात ना करें। आप 10 बातें उनको कह के आ जाएं और उस वक्त आप उनको जहनी तौर पे ट्रैप ना करें, उनको अपने हाथ में ना लें, तो आपकी बात बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम का ये सफर तलब इल्म का सफर था, और ये सारे वाक्यात जो इसमें आएंगे वो ईमान वालों को पेश हुए कि जिसमें वक्ती नुकसान था लेकिन आखरत के नुकसान से बच गए। उम्मते मुस्लिमा के नाते से हमें इसमें क्या बात समझ आएगी कि आज अगर मुसलमानों को इस दुनिया में होने वाले कुछ बातों की हिकमत समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों हो रहा है, तो अल्लाह सुबहाना ताला कहते हैं कि इससे तुम अपने लिए इबरत हासिल करो। नोट कर लीजिए कि क्या हिकमतें होती हैं ऐसे मौक़ों पर। दुनिया में जब भी कोई वाकया पेश होता है तो अल्लाह सुबहाना ताला कहते हैं इसको कबूल कर लो, ठीक है। अब दो किस्म के वाकयात, एक है खुशगवार, जब खुशगवार वाकयात आते हैं हमारी जिंदगी में, कोई फायदा होता है तो हम अपने अकीदे के मुताबिक फौरन सोचते हैं कि ये मेरी नेकियों का सिला है, हाँ देखा मैंने रात तहज्जुद बड़ी अच्छी पढ़ी थी ना तो आज सुबह ये हो गया, ये तो कोई मसला नहीं, इस पर कोई नहीं सोचता वाह व्हाट क्यों हुआ मेरे साथ क्यों हुआ। लेकिन जो दूसरी किस्म के वाकयात है जिनको नागवार वाकयात कहते हैं, इसको सुनने के बाद फिर दिल में कई किस्म के सवालात उभरते हैं। मसलन मोमिन कहता है क्यों हुआ, क्या मेरे गुनाह की सजा है, अच्छा मैं आजमाइश में हूँ, क्या हो सकता है। फिर कभी कभी शैतान को मौका मिलता है, देखो तुम तो इतने नेक हो फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, और भला फिर देखो ना अगर अल्लाह को तुम्हारी नमाजों की परवाह नहीं तो फिर और नमाजों से तुम्हें क्या होगा। तो लिहाजा ऐसे नागवार वाकयात की हकीकत समझाने के लिए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ये दिखाया। तो इन सारे वाकयात में हमें कुरान की वायत याद रहेगी, असान तक रहु शैयन वहुवा खैरुल लकुम, हो सकता है तुम्हें कोई चीज नापसंदीदा लगे लेकिन वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। फिर दूसरी बात, इन वाकया से जो सिखाई जाएगी वो क्या है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो खुद ब खुद नहीं हो रहा, यानी आप ये नहीं कहे कि ये दुनिया आटों पे है बाय चांस हो रहा है, बल्कि इनके पीछे अल्लाह की कुदरत दिखाई जा रही है। इन अल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर का सबक हमें इन वाकयात में मिलेगा। और फिर तीसरी बात ये समझ आती है कि जब भी कोई ऐसा वाकया आपकी जिंदगी में आए जो आपको अच्छा ना लगे तो ऐसे वक्त में उन चीजों को बुनियाद बनाकर अपनी मजीद इसलाह की कोशिश की जाए। फिर हजरत मूसा तनहा नहीं गए, ये जो जवान है ये इनका स्टूडेंट है, इससे क्या पता चलता है कि इल्म के सफर में और दीन के कामों में अच्छे साथी कौन होते हैं, जो अपने साथियों को साथ लेकर चलते हैं। क्योंकि अपनी जिंदगी में अपने शागिर्दों की ट्रेनिंग कर देना और अपनी जिंदगी में अपने बच्चों की ट्रेनिंग कर देना अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करना होता है, अपने सदका जारिया को बढ़ाना होता है। वो माँ बाप जो आखिरी दिन तक बच्चों को स्पून फीडिंग करते रहते हैं, ना सोचने की तौफीक देते हैं ना कुछ, याद रखिए उनकी मौत का धचका बड़ा सख्त होता है उन बच्चों के लिए, फिर उनके आंसू ही कोई और पहुंचेगा, उनको तो अभी इस दुख को भी नहीं सहना आता। इसी तरह वो उस्ताद या लीडर्स या बड़े जिसको जिस लेवल में ले लीजिए, हमेशा अपनी बात मनवाते हैं और कह दिया तो बस करना पड़ेगा वाली बात होती है। पहली बात है कि उनको अपने साथियों के टैलेंट से फायदा उठाने का मौका नहीं मिलता। हमेशा याद रखे हर बंदे में आपसे भी ज्यादा टैलेंट है। अब ये अच्छे उस्ताद का काम होता है कि उसको उभारे, सोचो आप बताएं, उसको 100 दफा भी पता होगा ना कि यस या नो, क्या क्या ठीक है क्या गलत है, फिर भी वो हर एक से पूछे कि आपका क्या ख्याल है, आप होती तो क्या करती, आप क्या मशवरा देती। इससे क्या फायदा होता है कि उनकी भी ट्रेनिंग होती है, वो कुछ और सोच रहे हैं, बाद में फैसला कुछ और हुआ तो उनको खुद बखुद समझ आ जाता है कि हम लोगों ने बात जो की थी वो ठीक नहीं थी, नेक्स्ट टाइम जब भी कभी मौका आएगा वो अपने आप पे रहेंगे। फिर आप देखिए कि बाहर मूसा रास्ता भूल गए हैं, लेकिन मूसा की डिटर्मिनेशन आपको इस वाक्य में दिखेगी कि वो रास्ता भूलने को जान छुड़ाना नहीं समझ रहे कि अच्छा फिर आज नहीं जाते, घर में ही बैठ के सुन लेते हैं या घर ही चले जाते हैं, ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। फिर जो शागिर्द थे जो खादिम साथ थे उनसे गलती हुई, एक इंस्ट्रक्शन दी थी वो उसको भूल गए, तो मूसा ने उससे कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं। और हकीकत है कि साथ रहने वाले अगर गलती ना करे तो आपके साथ कभी नहीं रहेंगे, बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग या जो अपने आप को हरफन मौला समझते हैं वो फिर किसी के साथ कैसे रहें। आज बहुत सारे लोग खुद काम करने में बहुत अच्छे फील करते हैं लेकिन दूसरों के साथ मिलके नहीं चलते क्योंकि अंदर अना भरी होती है, ईगो होती है। तो लिहाजा मूसा अलैहि सलाम ने उनसे कहा कि हम वापस अपने कदमों पे चलेंगे। फिर इसमें एक और बहुत ही खूबसूरत बात देखी कि भूख और थकन पे काबू पाना इल्म की शान है। और यहाँ ये भी पता चला कि शैतान भुलवा देता है, इल्म के रास्तों में ये सारे हथकंडे इस्तेमाल करता है ताकि ये हो। तो शुरू से सोच लीजिए कि ये सब कुछ तो होगा, इसलिए अब आगे देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंच के जहां जाना था। इमेजिन कीजिए कि उनकी गाड़ी आपके स्कूल के आगे खड़ी हो गई। अब जो लेने आए थे वो लेना चाहते हैं, दिल पहले से तैयार था तभी हुआ। अब मूसा का मुकालमा खिजर के साथ, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? हाईलाइट कीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं अपना, क्योंकि दीन का काम हो या दुनिया का काम हो, जब तक आप उसको किसी सिस्टम के अंदर नहीं लाएंगे, जब उसको आप किसी भी चीज के साथ जोड़ेंगे नहीं, लोग उसकी कमिटमेंट महसूस नहीं करेंगे। तो लिहाजा मूसा अलैहि सलाम ने परमिशन ली, और आज के दौर में परमिशन लेना ऐसे ही ऑफिशियली दूसरी चीजों को साथ लेना होता है। ये भी एक अच्छा मैनर है उम्मत मुस्लिमा का। लेकिन अफसोस की बात है, ये देखा गया आज हमें बींग अ नेशन हमारा रवैया क्या हो गया, क्या हम ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस में फंसना अपने ऊपर बोझ डालना समझते हैं। और बस जब अपने मुकाम के खिलाफ समझ लो, अब हमें क्या जरूरत है साइन इन की, और हम अब साइन आउट करें, अब हम पहले से बताएं कौन आ रहा है, कब आ रहे हैं, हम रीजन बताएं, तो वो क्या हुआ कि हम आजाद रहना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम सीखेंगे लेकिन हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, हम आते रहेंगे। तो आज तक तो दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी ने ऐसे डॉक्टर प्रोड्यूस नहीं किए जिन्होंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला ना लिया। आप बताइए कि जब तक हम किसी को ये उम्मीद नहीं दिलाते कि हम यकीनी तौर पे ये काम करेंगे, वो काम कर लेगा तो किस उम्मीद पे करेगा? आपको आना है, आपको नहीं आना, अगले को आखिर वक्त तक नहीं पता, तो क्या होगा? इसीलिए आप देखिए कि हमारे अमूमन प्रोग्राम में बदनज़मी हो जाती है, एक्सपेक्टेशन से खिलाफ रिजल्ट्स निकलते हैं, क्योंकि लोगों ने पहले कुछ नहीं कहा होता है, एंड वक्त पे फिर वो अपनी हाजिरी देकर वो सोचते हैं कि हमें किसी को बताने की जरूरत ही क्या, वो तो हमें पता ही है हम आएंगे, हम है इतने अहम। इस तरह की जो बेकायदगी है ना, इससे आज उम्मत मुस्लिमा का मोरल डाउन हुआ है। जरा आज किसी के घर जाने से पहले आप फोन कर ले पाकिस्तान में जाने के बाद कि अच्छा मैं आई हुई थी, मैं आ जाऊं, तो वो कहते क्या हो गया, बड़े गोरे बन गए हो, कोई अपने घरों में आज पूछ के आता, बड़ी अमेरिकन हो गई है। भाई अमेरिकन होने की क्या बात है, अल्लाह खुद कहता है आगे पढ़ेंगे सूरत नूर में, इजाजत लो। तो बस वो लोग कहते हैं अच्छा आने से पहले फोन इसलिए किए कि चाय के साथ जरा पकौड़े समोसे बना लो। उल्टी मत मारी हुई है, हर बात में उल्टी, हर बात में उल्टे। और जाएं और वो अच्छे मुंह ना बात करें तो कहेंगे खुशी नहीं, पता ही नहीं, वो बेचारे लड़ रहे थे घर में बैठे हुए, कोई झगड़ा चल रहा था, कोई दुखी था, तो आप पहुंच गए। तो ये चीजें दुरुस्त नहीं होती, हमेशा अपनी जात से दूसरों को खुशी दें। इसीलिए आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम की ये रिक्वेस्ट क्या थी कि आप मुझे रख लें ताकि आप मुझसे भी इस दानिश की तालीम दें जो आपको सिखाई गई। हाईलाइट कीजिए, एक मोटिव लेकर हमेशा इंसान आए कि मुझे इल्म सीखना है। और जहां दानिश कहा गया, हिकमत, इल्म घर बैठ के मिल जाता है, हिकमत उस्ताद के सामने बैठ के मिलती है। क्यों? उसमें सब्र होता है, उसमें मैनर्स होते हैं, उसमें एटिकेट्स होते हैं। गालिबन इमाम मालिक या किसी और की बात है कि मैंने अपने उस्ताद से एक बार इल्म सीखा, और शायद सैकड़ों बार कह लीजिए, मुझे सही फिगर याद नहीं कि 70 दफा पढ़ा या कितनी दफा पढ़ा, तो उसमें एक दफा इल्म सीखा, बाकी सब दफा मैंने उनसे हिकमत सीखी। तो याद रखिए, जब आप बार बार एक ही बंदे से सीखते हैं ना, तो आपको और बहुत कुछ मिल जाता है, क्योंकि आपको तकाबुल भी करना आता है कि पहले ये बात नहीं बताई थी, अब बताइए ये हालात में ये हुई हुई, और फिर एक किस्म का बॉन्ड भी बन जाता है आपस में। तो बाज़ औक़ात एक ही चीज को बार बार सुनना और बार बार उसी से सीखना भी फायदा देता है, क्योंकि इंसान को उससे बहुत सारे मामले जो है वो तय करने आ जाते हैं। तो खैर, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा आप मेरे से सब्र नहीं कर सकते। नोट कीजिए, पहली पाबंदी जो मूसा पे इल्म के रास्ते में लग रही है वो क्या है कि देखिए आपको सब्र करना पड़ेगा, सब्र के बगैर इल्म आता ही नहीं है। अक्खड़ कौम से वास्ता पड़े और बंदे के अंदर सब्र ना हो, कभी भी नहीं बात होगा। तो लिहाजा कहा कि सबसे पहला जिसको कि प्री रिक्विजिट क्या है इस कोर्स की, सब्र। यस, जल्दी उठना पड़ेगा, नींद पे काबू पाना पड़ेगा, सबक याद करना पड़ेगा। जब तक उम्मत मुस्लिमा भी सब्र नहीं करेगी, दुनिया में बात नहीं बनेगी। और दूसरी बात है कि सब्र यहाँ सवालों का सब्र भी था, ये ना हो कि जो दिल में आपके बात आए फौरन पूछ लें। आज के दौर का ये भी एक बहुत बुरा तरीका दिखा कि उस्ताद बात करते हैं, शागिर्द साथ ही पूछना शुरू हो जाते हैं, कोई कमेंट देता है, कोई बीच में लुक में देते हैं, पता चला 15 मिनट गुजर गए, बात जहां से शुरू हुई थी वो वहां पहुंच गई, और बात शुरू हुई थी मूसा की कौम से और वो गाय भैंसों पे चली गई। ये दुरुस्त तरीका नहीं होता। देखिए, थोड़ी देर सवाल को अपने अंदर रखना होता है। अब जिसका जब दिल चाहे तब पूछ लिया, ये बेसब्री है। आप देखिए कि सिंगल स्टूडेंट यूनिवर्सिटी है इस वक्त हमारे सामने, लेकिन मैनर्स और एटिकेट्स वो सिखाए जा रहे हैं जो आज भी अप्रूव हो चुके, कि जब तक स्टूडेंट्स को टेम ना किया जाए, हर वक्त वो हर बात करने की पोजीशन में हो, तो वो कभी भी इल्म हासिल नहीं करेगा। तरीका क्या होता है? दिल में सवाल आया, उसको लिख लीजिए, बाद में जब मौका मिले उसको बता दिया जाए। तो ओबीडियंस ही असल में वो चीज है जिसको आप कहते हैं। फिर हर जगह इंटरेक्टिव सेशंस नहीं चल सकते, हर जगह आपसे कोई डिस्कशन स्टाइल पे बात नहीं होगी, एक आप बोले एक आप बोले, कुछ आप सुने हम सुनाएं। लेकिन जब दिल में बड़ाई का एहसास होता है, कहते हैं हमसे तो कुछ सुना ही नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया कि देखिए, आप मेरे साथ सब्र नहीं करेंगे, और जिस चीज़ की आपको खबर ना हो, आखिर आप इस पर सब्र कर भी कैसे सकते हैं? खुद ही सहूलत, इससे पता चलता है अच्छा उस्ताद अपने शागिर्दों को सहूलत देता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे। कमिटमेंट फॉर्म फिल कर रहे हैं कि यस आई विल डू ऑल माई बेस्ट, मैं सारी कमिटमेंट को अपने हिसाब से पूरा करूंगा और मैं किसी मामले में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। तो ये एक अच्छे स्टूडेंट की दो खूबियां कि आई विल फॉलो द रूल्स और आई विल बी ओबीडियंट। और जब तक ये काम नहीं होगा, दुनिया का कोई काम भी होने वाला नहीं होगा। खैर, मूसा अलैहिस्सलाम का एप्लीकेशन फॉर्म कबूल हो गया। काल फइनित्तबअ'तनी, उन्होंने कहा अच्छा, अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो मुझसे कोई बात ना पूछिएगा जब तक कि मैं खुद इसका जिक्र ना कर दूं। क्या पता चला कि जब ऐसे मामलात हो गए, मूसा से उनकी बातचीत हो गई, का फाइन है फन तलाका, फिर वो दोनों रवाना हुए, यहां तक कि वे कश्ती में सवार हो गए। अब यहां से ऐसे लगता है कि वो जो स्टूडेंट था वो चला गया। इसके आगे हमेशा तस्निया के सीगे हैं, मल्टीपल नहीं है। यहां से क्या पता चलता है कि जो लोग साथ खिदमत के लिए होते हैं, अगर उनको एक मुकाम के बाद रोक दिया जाए कि अब आप बैठिए, अब आगे पर्सनल मीटिंग है, अब आपकी जरूरत नहीं, आप आराम कर लीजिए, तो माइंड नहीं करना चाहिए। हर वक्त हर जगह हर हाल में अगर कोई इंसान साथ रहता है तो बाद दफा फायदे से ज्यादा नुकसान ज्यादा होने लग जाता है। तब मूसा अलैहिस्सलाम का वो सफर पूरा हुआ, उनको एक और साथ मिल गया, दोनों चले, यहाँ तक कि वे कश्ती में सवार हो गए। इस शख्स ने कश्ती में शिगाफ डाल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने इसमें शिगाफ डाल दिया ताकि सब कश्ती वालों को डुबो दे। देखिए, शुरू में ही डिसोबीडियंस ही शुरू हो गई और भूल गए थे असल में। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल कर लिया इससे पहले कि उनके उस्ताद उनको उसकी हकीकत बताते कि ऐसा क्यों किया मैंने। खैर, ये तो आपने एक बड़ी सख्त हरकत कर डाली। उन्होंने कहा, मैंने आपसे कहा ना था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते? मूसा ने कहा, भूल चूक पर मुझको ना पकड़िए, मेरे मामले में आप जरा सख्ती से काम ना लें। बस जब स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं ना, तो ठीक से पढ़ते कोई नहीं, बस साइन कर लेते हैं, कहाँ करने कहाँ करने। फिर बाद में क्या हुआ, जब कोई रूल ब्रेक हुआ, आप कहते हैं जी आप साइन कर चुके हैं, वो कहते हैं कहाँ, हमें तो बताया ही नहीं गया। और ये इतनी दफा हुआ कि हम पूरे ओरिएंटेशन डे पे, बल्कि फॉर्म फिल करने से पहले वो सारे फिगर्स दिखाते हैं कि देखिए ये रूल पढ़ लीजिए, सबको पता होता है। लेकिन जब वो रूल टूटता है, कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, हमें कहा ही नहीं, कभी आज तक कहा ही नहीं। कभी लेट एडमिशन होता है, कभी उस प्रोग्राम को मिस किया होता है। तो याद रखिए कि ऐसे वक्तों को फिर इंसान किस तरह टैकल करे कि हर चीज को बेहतर तरीके पे करे। मेरे और आपके लिए अमल किस में यही बात है कि जब कभी मुझे मौका मिले किसी सिस्टम में दाखिल होने का, तो मैं खुद सारी चीजों को समझ लूं, पढ़ लूं, फिर अल्लाह से दुआ करूं कि मैं करूं। मैं सोचती हूँ कि जितना वर्क मैनेजमेंट पे लगता है, उतना तो एकेडमिक पे भी लगे, तो न जाने इंसान क्या कुछ कर दे। लेकिन ये सब क्यों किया जाता है? ताकि किसी की हक तलफी ना हो, काम को बेहतरीन और आसान दर्जे पे किया जाए। तो एज अ स्टूडेंट या एज अ, यानी जिसको आप लिसनर कह लें, गेस्ट कह लें, हमेशा मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए। वो किधर से गुस्से, जूते इधर रखे, बैग इधर रखे, फोन बंद कर दें, बच्चों को ना ले जाएं, तो इसको दिल की खुशी से मानना चाहिए। जहाज में बैठते हुए तो हम कभी नहीं उसमें कहते कि नहीं जी हम तो फोन साथ सुनते ही रहेंगे, लेकिन दीन की चीजों पर खास तौर पर हमारा रवैया थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। तो किस तरह मुझसे कि हजरत मूसा पहला पहला चांस मिस कर गए। उस्ताद ने क्या कहा, अच्छा, क्या मैंने आपसे कहा नहीं था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर लेंगे? अच्छा, अगर आप कुछ कर दिया तो फिर आप मेरे साथ ऐसा मामला ना कीजिए। अब क्या हुआ आगे? मूसा ने कहा, आपने एक बेजान की जान ले ली, हालांकि इसने किसी का खून ना किया था, ये काम तो आपने बहुत ही बुरा किया। पहली आयत सूरत मरियम की आयत 28 है। या उख्ता हारून, मा कान अबू किमरा सऊ इन वमा कान وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيشًا. اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ بھی بد اتوار آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ اس آیت میں حضرت مریم علیہ السلام کو تانے دیے جا رہے ہیں۔ جب اللہ کے ایک حکم کو وہ ان کے پاس لے کر آئیں، تو اسی طرح سے زندگی میں بعض دفعہ ہم جب اللہ کا حکم مانتے ہیں تو پھر خاندان کے لوگ تانے دینے لگتے ہیں۔ بی بی مریم کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بڑی آزمائش میں رکھا تھا، لیکن آج ہمیں اگر کبھی اللہ کے کسی حکم کو مان کر بظاہر کوئی نقصان محسوس ہو، تو اس وقت اس آیت کو یاد کر لیجئے کہ مریم جیسی بڑی آزمائش تو ہم پر نہیں پڑی، کہ وہ تو کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہتی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی یہ بے گناہی ثابت نہ ہوتی۔ پھر اسی طرح اگلی آیت سورۃ طہٰ کی آیت 38 ہے، اس اوہینا الی امک ما یوحا، جب ہم نے تمہاری ماں کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی ماں کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ آپ نوٹ کریں کہ یہاں لفظ ماں ہی آ رہا ہے، اور آپ فیل کریں گے اس آج کے بارے میں گھریلو زندگی کی کہانیاں، اور خاص طور پہ رشتے، اور رشتوں میں پھر بھائی بہن کا خوبصورت رشتہ اور ماں اور بیٹے کا رشتہ ہم دیکھیں گے۔ پھر اسی طرح سے سورۃ طہٰ کی آیت نمبر 40 ہے، اس تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک، جب تمہاری بہن فرعون کے پاس گئی اور کہنے لگی میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پالے، تو اس طریقے سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کرے، اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا، تو ہم نے تم کو غم سے خلاصی دی، اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی، پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے، پھر اے موسیٰ تم قابلیت رسالت کے اندازے پر آ پہنچے۔ بڑی ہی خوبصورت آیت ہے۔ یہاں جو امت کی بات ہے، آیت کی بات ہے، وہ کیا ہے کہ ہم آپ کو آپ کی ماں کی طرف لے آئے۔ جب اس آیت پہ ہم پہنچیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کا حق دیں، لیکن یہاں سے بھائی اور بہن کی محبت بھی ہے، اور حقیقت ہے کہ آپ بہترین گفٹ جو آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ بھائی یا بہن ہے۔ لیکن آج شیطان نے ایسا دکھی کر دیا کہ ہم اپنے بچوں کو ایک رکھ کے پال لیتے ہیں لیکن ان کو بھائی یا بہن نہیں دیتے۔ بھائی کو بھائی اچھا لگتا ہے، بھائی بہن کو بہن اچھی لگتی ہے۔ جب بھائی کا بھائی آ جاتا ہے پھر ان کا بھی دل کرتا ہے ہماری کوئی بہن ہو۔ تو کبھی بھی اپنے بچوں کو ان تحفوں سے محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سورۃ طہٰ کی آیت نمبر 94 ہے، قال یا ابن امہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، کہنے لگے بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ کہیں گے کہ تم نے تو بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا کوئی لحاظ نہ رکھا۔ تو یہاں ہمیں حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کو صفائی پیش کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے ایک خوبصورت ربط اس بارے کی آیات میں دیکھا ہو، تو چار آیتیں ہیں اور چار مختلف رشتوں کی بات ہے۔ پہلے مریم کا ایک ماں کے ناطے سے تعلق، پھر موسیٰ کو ان کی ماں سے، پھر بہن کے ساتھ، اور آخری آیت میں بھائی۔ تو حقیقت ہے کہ یہ سورت اور یہ پورا پارا ہی ایک قسم کا بھائی بہنوں والا پارا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہم اس کا حق ادا کریں۔ اب شروع کریں گے آج۔ انہوں نے کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ میرے سے صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ لیجیے گا۔ اب تو لگ رہا ہے موسیٰ خود ہی ریزائن کرنے والے ہیں کہ آئی ڈونٹ فیل ٹو مینی، یعنی سٹریس نہیں برداشت کر سکتا، یا میں اپنے اوپر اتنی پابندیاں نہیں لے سکتا۔ تو موسیٰ کہہ رہے ہیں اب اچھا بس، اب آپ کوئی غلطی کر لی نا تو اب میرا نام کاٹ دیجیے گا، لیجیے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک ایک بستی میں پہنچے، وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی مہمانی سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرائی چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے لیتے، انہوں نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم۔ تھا کر یہ کبھی جملہ نہ ہے ہماری زندگی میں کہ ہمارے استاد، ہمارے محسن ہمیں کہہ دیں آج کے بعد میرے ساتھ آپ نہیں چل سکتے، سوری، enough is enough, that's it. اس کے بعد میں آپ کو اور برداشت نہیں کر سکتا۔ کہا نہیں، اب آپ اس کے بعد نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ نے خود کہہ دیا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی کہہ دیا تھا مجھے چھوڑ دیجئے گا، تو ورنہ تو ہو سکتا ہے استاد کبھی بھی نہ ان کو چھوڑتے۔ تو کیا پتا چلا کہ بعض اوقات کچھ لوگ خود اپنے خلاف خود حجت قائم کر لیتے ہیں۔ خیر، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت کرتے تھے، मैंने चाहा कि इसको गिरफ्तार कर दूं, क्योंकि आगे एक ऐसे बादशाह का इलाका था जो हर इस कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था, यानी जो अच्छी होती। रहा वो लड़का जिस तो उसके वालदैन मोमिन थे, हमें अंदेशा हुआ कि ये लड़का अपनी सरकशी और कुफर से इनको तंग करेगा, इसलिए हमने चाहा कि इनका रब इसके बदले इनको ऐसी औलाद अता करे जो इखलाक में भी इससे बेहतर हो और जिससे सिला रहमी भी मतवक्के हो। और इस दीवार का मामला यह है कि ये दो यतीम लड़कों की है जिस शहर में रहते हैं। इस दीवार के नीचे इन बच्चों के लिए खजाना दफन है और इनका बाप एक नेक आदमी था, इसलिए तुम्हारे रब ने चाहा कि ये दोनों बच्चे बालिग हो जाएं और अपना खजाना निकाल लें। यह आपके रब की रहमत की बिना पर किया गया और मैंने अपने इख्तियार से कुछ नहीं किया। ये है हकीकत इन बातों की जिन पर आप सब्र न कर सके। यहाँ पे ये किस्सा पूरा होता है। इसमें दो तीन चीजें हमारे सामने, आप देखिए कि तीनों वाकयात बड़े अनयूजुअल थे। पहला वाकया कहता कि एक लड़का सबके बीच में जो खेल रहा है, तो हिजर अलैहिस्सलाम ने उसको कत्ल कर दिया। अब मूसा जो एक नबी भी थे, बनने वाले थे, चले नबी तो बन चुके थे, रसूल बनने वाले थे, उनको पता था कि तौरात में भी कत्ल की सजा कत्ल है, तो उन्होंने फौरन देखा एक गलत काम होते थे कि चुप ना रहे। यहां से आपको मूसा अलैहिस्सलाम का दाई अल दीन होना और बुराई को देखकर खामोश ना रहना दिखेगा कि कभी भी एक साहिब ईमान शख्स दूसरों पे ज्यादती होता देखकर कॉम्प्रोमाइजिंग होकर आराम से नहीं बैठता। लेकिन असल में अल्लाह सुब्हान तआला मूसा को दिखा रहे थे कि इन कामों के पीछे हिकमत क्या है। वो बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप के लिए बदनामी का जरिया बनने वाला था, तो इसमें अमल की बात है। अगर अल्लाह ना करे किसी के बच्चे की डेथ हो जाए बचपन में जवानी में, तो यही सोच लीजिए कि इसकी मौत में ही फायदा था। आप देखिए कि बार सफा छोटा बच्चा ही बॉर्ड हो जाता है माँ से, कैसे आप सोचें कि ये खैर है। आज एक चंद दिन का बच्चा गया या माँ के पेट का चला गया, अगर ये 12 साल का होके होता तो कैसा लगता। जवानी में जाता, चलो अल्लाह अभी दिल में इतनी मोहब्बत नहीं भी डली थी तूने ले लिया, आपको सुकून मिल जाएगा। आप कहते हैं अच्छा 10 11 12 साल का बच्चा दुनिया से चला गया, बड़ा दुख हो रहा है, हाँ इतनी तकलीफ नहीं। आप शुक्र कीजिए 12 13 का होके गया, अपनी शादी वाले दिन 25 साल का जवानी फौत हो गया, फिर आपको सुकून मिलेगा। 25 साल का होके अल्लाह ना करे कोई शादी के दिन किसी की डेथ होती है तो आप रोते नहीं रोइए, क्या पता कल वो अपने पीछे 4 बेटियां छोड़ के बीवी छोड़ के चला जाता, फिर आप इस पे रोती कि हाय देखो बच्चियां छोड़ गया, बीवी छोड़ गया, अब चला गया। तो याद रखिए हमेशा बी पॉजिटिव। ये वैसे एक ब्लड ग्रुप है और मेरा बी पॉजिटिव होता है जो सबको लगता है, या वो पॉजिटिव होता है, ओ पॉजिटिव सबको लगता है, लेकिन बी पॉजिटिव इज ओ पॉजिटिव। हर हाल में खुश रहने वाला बंदा वही होता है जो हमेशा आजमाइशों के पीछे देखे, इधर के इसके बैक पे क्या है, इसमें अल्लाह ने क्या खैर रखी हुई है। और जिसको नहीं खुश होना, वल्ला ही सोने का लुकमा आप उसके मुंह में डालें वो कभी खुश नहीं होगा, वो उस पर भी नाराज होगा कि ये सोने का क्यों, ये चांदी का क्यों नहीं है। तो लिहाजा इस वाक्य की हिकमत समझ आ गई। दूसरा वाक्य जो हमने सुना कश्ती का, कश्ती उन्होंने क्यों तोड़ी, क्योंकि दूसरी तरफ जो बादशाह था वो जालिम था और वो जो अच्छी अच्छी कश्तियां थी उनको ले लेता था और थोड़ी थोड़ी डिफेक्टेड कश्तियां थी उनको छोड़ता है। अब खिजर अलैहिस्सलाम ने उसकी कश्ती को थोड़ा सा डैमेज किया, किस तरह किया कि चलो कश्ती बच जाए। यहां बहुत गहरा नुकता है हमारे लिए जिंदगी के असूल का कि कश्ती बच जाए, चलो जाहरी टिप टॉप नहीं होगी, उसका मुआश तो चलता रहेगा। तो वही हुआ, जब वो कश्ती थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी देखी तो बादशाह ने जाने दी, गरीब बच्चों की कश्ती बच गई। इसमें क्या पता चलता है कि बादशाह बहुत ग्लैमरी चीजें यूज करते हैं, पंप एंड शो नजर लग जाती है, इंसान चोरों डाकों की नजर में आ जाता है, लोगों के हसद का शिकार हो जाता है, तो फिर वो चीज छिन जाती है। तो उससे बेहतर है कि इंसान की जरूरियात पूरी होती रहे, बहुत ज्यादा इस तरह की मामला ना हो। तीसरी चीज दीवार की थी, दीवार वो उन लोगों ने तो मैं खाना भी नहीं खिलाया और उनके जो उस्ताद थे उन्होंने उसकी दीवार को बगैर किसी मुआवजे के लगा दिया, तो इससे बेलॉस होना भी दिखा। लेकिन असल बात क्या थी कि उस दीवार के पीछे माँ बाप की नेकी थी। याद रखिए कि रिज़्क हलाल हो और माँ बाप नेक हो, इसका असर आने वाली नस्ल पर पड़ता है। माँ बाप चाहते थे कि बच्चों के जवान होने तक ये सारा माल जो है ये नीचे ही रहे, लेकिन दीवार अपने वक्त से जरा जल्दी गिरने लगी, अल्लाह ने सबब पैदा करके यतीमों का काम करा दिया। तो मेरे और आपके लिए इन सारी चीजों में आज ऐसा उम्मत मुस्लिमा उम्मत वसत क्या है कि हमें हमेशा अल्लाह के फैसलों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम खुद देखें कि अल्लाह ताला ने जो मामला रखा है उसमें खैर क्या है। जब आप किसी बड़ी से बड़ी चीज को सुने, मसलन इस्लाम के खिलाफ बात हुई, नबी के खिलाफ बात हुई, किसी को कुछ कहा, तो फौरन इस वाक्य को सोचें कि अब इसके पीछे खैर क्या है। जितना लोगों ने शर फैलाना चाहा उतना इस्लाम फैल गया। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें आजमाइशों की हकीकत पे ले आए। अब आगे ये जो 16th पारा शुरू हुआ है अभी, इसकी भी थोड़ी सी झलकियां आपको दिखाऊं कि इस पूरे पारे का थीम आजमाइशों की हकीकत है। किस किस की आजमाइश है? अभी हमने देख ली मूसा की आजमाइश, यानी आजमाइशों की हकीकत असबाब के पर्दे में मीन्स के पीछे झांक के देखें तो आजमाइशें रहमत लगने लगती हैं। मसलन मूसा की आजमाइश क्या थी? इल्म के रास्ते की, आयत 60 से 82 में हमने पढ़ा। फिर इसके बाद अब जुलकरनैन की आजमाइश का किस्सा आएगा, जो इकतदार की आजमाइश थी, और इसमें इंशाल्लाह हमें मुस्लिम हुक्मरानों के लिए बहुत ही खूबसूरत सी गाइडलाइन मिल जाएगी, आयत 83 से 98 में। इसके फौरन बाद सूरत मरियम शुरू होगी, तो हजरत जकरिया की आजमाइश आयत नंबर 2 में उसका जिक्र है, बुढ़ापे तक अल्लाह ताला ने औलाद से महरूम रखा। फिर आयत 16 में हजरत मरियम की आजमाइश का जिक्र शुरू होगा कि कैसे कि कुंवारी बच्ची को अल्लाह ताला ने बच्चे की आजमाइश में डाल दिया। फिर आयत 30 से 34 में हजरत ईसा की आजमाइश का जिक्र है कि अल्लाह ने कैसे उनको आजमा लिया, बचपन में ही शुरू होगी उनकी आजमाइशें। और उसके बाद आयत 41 से 50 में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश का जिक्र है कि कैसे अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी को डाला। उसके बाद आयत 65 से 75 में सूरत मरियम में इंसान की आजमाइश है कि दुनिया की चमक दमक वाज दफा उसके लिए इतना बड़ा फितना बन जाती है, कितने प्यारे रब को नाराज करके वो इन चीजों को हराम से लेने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम की आजमाइश शुरू हो जाएंगी। पूरी सूरत तौहा ही पढ़ेंगे तो आपको ऐसे याद लगेगा कि हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करके आए हैं। फिर फिरौन की आजमाइश का जिक्र आएगा कि कैसे बाप दादा का नाम लेकर उसने अपने आप को पीछे रखा, और आयत 65 से 75 होगी। फिर आगे आप जाएंगे तो देखेंगे जादूगरों की आजमाइश का जिक्र आएगा कि ईमान की आजमाइश उनकी हो गई, आयत 65 से 75 उनका जिक्र है। फिर सामरी एक शख्स था जिसने बनी इसराइल को बहकाया था, उसकी आजमाइश है, आयत 95 से 97 में। और उसके बाद आप देखेंगे आदम और इबलीस की आजमाइश है, आयत 115 तो आहा से लेके 123 है। और उसके बाद अल्लाह की याद से एराज करने वाला, व मनार अदन जिक्री फाइन नलहु मई शतन दन का, 124 से 127 में। अब ये आप सब ना भी नोट कर सके हो, लेकिन अब आपको ये अंदाजा होने लगा है कि इस पूरे पारे को हम किस नरियो में पढ़ेंगे। आजमाइशों की हकीकत को अगर असबाब के पर्दे में जान लेंगे, कभी आपके चेहरे पे दुख तकलीफ का नाम नहीं होगा, आपका दिल कभी भी बोझल नहीं होगा, आप डिप्रेस नहीं होंगे, आपका इस दुनिया से दिल उचाट नहीं होगा। मुसीबतों तकलीफों के बीच में बैठे हुए भी आपका दिल चेहरा दिमाग मुतमईन और मसरूर होगा। आइए अब देखते हैं हम हजरत जुलकरनैन का किस्सा, ये कौन थे? देखिए हुक्मरान 3 किस्म के होते हैं, एक होते हैं जालिम हुक्मरान, दूसरे होते हैं आदिल हुक्मरान, और तीसरे होते हैं मोहसिन हुक्मरान। जालिम हुक्मरान तो अल्लाह की पकड़ में जाएंगे, आदिल हुक्मरानों के लिए बहुत नवीदे हैं, लेकिन जो मोहसिन हुक्मरान होते हैं वो असल में वो चीदा किरदार हैं दुनिया के, जिनको आज एक को तो हजरत उमर के नाम पे लोग जानते हैं। तो जुलकरनैन एक ऐसा शख्स था जिसको अल्लाह ने दुनिया की भी दौलत दी थी और दीन की दौलत भी दी थी। आप कह लीजिए, मैं आपको अगर बड़ी बात ना कह दूं तो जुलकरनैन की सूरत में अल्लाह ने आज उम्मत मुस्लिमा को इस दुनिया के कंट्रोल को चलाने वाला एक आइडियल हुक्मरान बनाया। हम मुसलमान चाहते हैं पूरी दुनिया में इस्लाम फैले, चाहते हैं ना लोग अल्लाह के दीन से जुड़े, लोग कत्ल गरारत और गंदगी छोड़ दें, चाहते हैं कि नहीं? हम चाहते हैं कि दुनिया से करप्शन का खात्मा हो, बेदीनी चली जाए, जो भी बेसकूनियां आज दिखती हैं, तो उसके लिए जुलकरनैन एक किरदार है। आज उम्मते मुस्लिमा अगर ये किरदार अदा करे, जहां जहां कोई लीडरशिप पे, अगर वो लोगों को देने वाला बन जाए, हर कीमत में लोगों की खिदमत करने वाला बन जाए, अपने जाति फायदों से ज्यादा लोगों के फायदों पे, आप देखिए लोग आपको फोन करके आपको इनविटेशंस दे के अपने अपने मुल्कों में बुलाएंगे। और इंशाल्लाह हम इसको पढ़ते वक्त दुआएं भी करेंगे कि अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को अब ऐसे किरदार दे कि जो दीन और दुनिया की दौलत से लैस हो। आप कहेंगे हम हुक्मरान तो नहीं है, हुकूमतों में अल्लाह ने नहीं दी, लेकिन आप नोट करेंगे कि जिन मीन्स और असबाब की बात जहां जुलकरनैन के नाते से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इंडिविजुअली मुसलमानों को बहुत मीन्स दी है, पैसा माल दौलत ताकत इज्जत बहुत है मुआशरों में। अगर हम अपने अपने मीन्स को अल्लाह के रास्ते में लगाने की नीयत कर लें तो आप देखिए कि कम अज कम 50 to 60% काम तो उम्मत मुस्लिमा की बहाली का हो जाएगा। बाकी भी जब ये हम करते हैं, जब लोग इस लेवल पे अल्लाह के दीन के लिए लगाने वाले बन जाते हैं, अल्लाह तोहफे में कोई ना कोई एक अच्छा हुक्मरान भेज ही देता है। तो हुक्मरानों को बुरा कहने की बजाय हमें अपनी नेमतों को अपनी चीजों को अल्लाह के रास्ते में लगाना है इंशाअल्लाह ताला। دیکھتے ہیں کون تھے وہ. اے نبی، لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہیے میں اس کا کچھ حال آپ کو سناتا ہوں. ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور انہیں ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے. کیا پتہ چلا کہ دین کی اور دنیا کی دولت ساری ایک جگہ جمع ہو سکتی ہے. یہ چیز نہیں ہے کہ اسلام ہمیں دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے سے روکتا ہے. کیسے اس نے اپنے مینز کو اور اپنی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں لگایا؟ سب سے پہلے انہوں نے مغرب کی طرف ایک مہم کا سامان تیار کیا، حتیٰ کہ جب سورج کے ڈوبنے کی حد تک پہنچ گئے تو انہوں نے سورج کو کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں ایک ایسی قوم ملی. ہم نے کہا ہے ذوالقرنین، تجھے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی کہ ان کے سخت نیت رویہ اختیار کرے. یعنی جب کوئی حکمران کسی ملک کو فتح کر لیتا ہے تو دو ہی رویے ہوتے ہیں نا، یا وہاں جا کے ظلم کرے یا انصاف کرے. تو کہا کہ آپ جو بھی کریں. انہوں نے کہا ان میں سے جو ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹا جائے گا اور وہ اسے اور سخت عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم ان کو نرم احکام دیں گے. ہائی لائٹ کیجیے، مینجمنٹ کا دا بیسٹ رول ہے یہ، دی بیسٹ رول، کہ سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکیں گے. جو کام کرے گا، رولز کو فالو کرے گا، ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے، ہم اس کو اسٹوڈنٹ آف دا ویک بھی کہہ دیں گے، ہم اس کو بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دی کلاس بھی کہہ دیں گے، اور بیسٹ پرسن آف بیسٹ پیرنٹ کا لقب بھی دے دیں گے. لیکن جو رولز نہیں توڑے گا اس کے سم سختی کریں گے. دیکھیے، جب ہم سب کو ایک لاٹھی میں ہانکتے ہیں نا، جو رول توڑ دیں ان کو بھی کہتے ہیں اس اوکے، کیونکہ یہ ناراض ہو کے چلے گئے تو پھر تو ہمارے مسجد میں لوگ آئیں گے ہی نہیں، اور رولز ماننے والوں کو بھی ایک ہی جگہ رکھیں تو اینڈ پہ آپ کے پاس کون لوگ رہ جائیں گے آپ کو پتا؟ صرف رولز توڑنے والے. کیونکہ جنہوں نے رولز کو فالو کیا آپ نے ان کو، اور نہ فالو کرنے والوں کو ایک ہی لاٹھی میں ڈال دیا، وہ لوگ بس وہاں سے چلے جائیں گے. پھر آپ جوں جہاں کرتے ہوئے لوگوں کی سارا وقت سیٹ کریے. جو لوگوں سے ڈر کے اپنے رولز توڑتا ہے نا، یاد رکھیے وہ نہ تو لوگوں کو خوش کرتا ہے، لیکن سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ کریم کوالٹی کے لوگ اس سے نکل جاتے ہیں. تھوڑے لوگ ہوں، رولز کو ماننے والے ہوں، کمیٹڈ ہوں، یہ بہت بڑی بھیڑ سے بہت بہتر ہے. وجہ کیا؟ کہ ان سے آگے کچھ نکلے گا. جو آج سننے اور بات کو ماننے کے دوران رولز نہیں فالو کرے، کل وہ آپ کی اچھی ٹیم کہاں بنیں گے؟ وہ تو ہمیشہ لوگوں کو سہولتیں ہی دیتے رہیں گے اور رولز توڑتے رہیں گے، کبھی ایک وجہ سے کبھی ایک سے. تو یہاں ذوالقرنین کی روشنی میں یہ گہرا اصول ہے جس پہ عمل کرنے کی آج امت مسلمہ کو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم. پھر انہوں نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچے. وہاں انہوں نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان نہیں کیا گیا. یہ حال تھا ان کا اور ذوالقرنین کے پاس، جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. پھر اس کے بعد ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو اسے ان کے پاس ایک ایسی قوم ملی جو مشکل سے ہی بات سمجھتی تھی. ان لوگوں نے کہا، ذوالقرنین، جاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کا دے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بنتا میر کرا دے؟ انہوں نے کہا، جو کچھ مجھے میرے رب نے دے رکھا وہ بہت ہے، بس تم محنت کے ساتھ میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں. مجھے لوہے کی چادریں لا دو. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ کر دی گئی تو اس نے کہا، لاؤ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا لے لوں گا. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ سکتے تھے، اس میں سوراخ کرنا ان کے لیے اور بھی زیادہ مشکل تھا. ذوالقرنین نے کہا، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، یعنی مٹی میں ملا دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. یہ آپ دیکھیں کہ ادھر بھی ہمیں تین مختلف واقعات ملے. پہلی چیز تو اس میں ہمارے سیکھنے کی کیا ہے، کہ اسلام دنیا میں مقصد کے ساتھ گھومنے سے منع نہیں کرتا. بعض لوگ پرپس لیسلی کہتے ہیں ہم ورلڈ ٹور پہ جا رہے ہیں، ہم ادھر گھومیں گے، سیر کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ آپ تھوڑی سی نئی چیزیں دیکھ لیں گے تو عبرت کی نظر ہو. دوسری بات، دوسروں کو فائدہ دینا. ذوالقرنین جہاں بھی گئے، پھر آپ نے دیکھا سورج نکلنے کی جگہ پہ گئے ایسٹ میں ٹوٹل، پھر ڈوبنے کی جگہ میں گئے ویسٹ میں، پھر شمال میں گئے. ایسے لگتا ہے کہ ناروے سے لے کے آسٹریلیا تک ہر ڈفرنٹ علاقے کو انہوں نے گھوما، اور جہاں جا کر جو کام کیا وہ دوسرے سے فرق تھا. ملٹی فنکشنل تھے. ایک مومن جو ہے وہ ہمیشہ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، کبھی علم کے ساتھ، کبھی دنیا کے ساتھ، کبھی کھانا پکا کے، کبھی اسماعیل کے ساتھ، کبھی اس کے گھر کی صفائی کر کے. تو دین صرف قرآن کلاس کی بیندر بیٹھ کر ٹیبل چیئر سجا کے پڑھانے کا نام نہیں ہے. آپ لوگوں کی نیڈ آف دی آور دیکھیں، کس کو کس وقت آپ سے تسلی چاہیے، کس وقت کسی کو آپ سے کیا چاہیے، وہ کام کرنا. फिर एक और चीज इसमें देखा कि जुल्कर्नैन ने इन सब चीजों पे कोई अवार्ड नहीं चाहा, इतनी बड़ी दीवार बना दी, इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो गया उनसे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि नीचे अपना नाम लिखा दे। आज कोई किसी हॉस्पिटल में एक संगे बुनियाद भी रखे तो वहां नाम लिखा जाता है जी ये इसकी संगे बुनियाद उन्होंने रखा था, ये डिपार्टमेंट उनके नाम का, ये फलां उसके नाम पे, ये लैब उन्होंने बनाई। तो इन कामों को अल्लाह के लिए करना ही फायदा है। इसलिए अब आप देखेंगे कि अब आखिरी आयतें जो सूरत की चल रही है इसमें पूरी सूरत का थीम यही बताया गया कि जब एक इंसान अपनी जात से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए काम करता है तो लोगों को नफा होता है। जहां इदारे प्यारे हो जाएं, जहां अपने ओहदे प्यारे हो जाएं, जहां खुद को बड़ा समझना हो जाए, वहां फिर दीन नहीं पनपता। इसीलिए अल्लाह ताला क्यामत का एक मंजर हमारे आंखों के सामने लाकर क्या फरमाते हैं, व तरक ना बादहुम यौम इजी यमूजु फी बादे व नुफिख फिस्सूर व नुफिख फिस्सूरी फजमा ना हुम जमा। और उस रोज हम लोगों को छोड़ देंगे कि समंदर की मौजों की तरह एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता हो, और सूर फूका जाएगा और हम सब इंसानों को एक साथ जमा करेंगे। सोचिए ऐसे फौजों की फौजें जमा हो रहेंगी क्यामत के दिन, और वो दिन होगा जब हम जहन्नम को काफिरों के सामने लाएंगे, इन काफिरों के सामने जो मेरी नसीहत की तरफ से अंधे बने हुए थे और कुछ सुनने के लिए तैयार ना थे। हाईलाइट करेंगे, अल्लज़ीन कानत आयुनुहुम फी ग़िताएन अन ज़िक्री वकानु ला यस्ततीऊना समअ। दो बातें, ना सुनना चाहते थे ना देखना चाहते थे, अल्लाह ने ऐसे लोगों को काफिर कहा। आप थोड़ी देर के लिए अपने कानों को भी बंद करें और आंखों के आगे भी हाथ रख लें तो आपको अपना दम घुटता हुआ दिखेगा। काफिर की जिंदगी ऐसी ही जिंदगी होती है, इनकार करने वाले की। फिर अल्लाह सुब्हान तआला आगे फरमाता है का हमारा गोल, अफहसिबल्लज़ीना कफरू, तो क्या ये लोग जिन्होंने कुफर इख्तियार किया ये ख्याल रखते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे बंदों को अपना कारसाज बना ले। हमने ऐसे काफिरों की जियाफत के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है। ऐ नबी इनसे कहो हम तुम्हें बताएं अपने अमाल में सबसे ज्यादा नाकाम और नामुराद कौन है। हाईलाइट करें तो आयत 104 को, दिल बैठने लगता है इस आयत को पढ़ते हुए। कौन अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा महरूम और नाकाम है, वो कौन लोग हैं? अल्लज़ीन दल्ल सायहुम फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनअ। ये वो लोग हैं कि दुनिया की जिंदगी में जिनकी सारी कोशिशें और जिद्दोजहद राह से भटकी रही और वो समझते ही रहे कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। नोट कीजिए, आप देखिए कि दो तरह के काम लोग दुनिया में कर रहे हैं। एक तो गुनाह के कर रहे हैं, बिदात कर रहे हैं दीन के मामले में, और दुनिया के मामले में वो न्यूड फिल्में बना रहे हैं और खराब काम कर रहे हैं। उनकी क्यामत के दिन हसरत क्या होगी? दुनिया के नाम पे भी गलत कामों पे मेहनत की, दुनिया को इंसानियत को नासूर दिया बेहयाई का और खराबियों का, और दीन के नाम पे सुन्नतों को छोड़ के बिदतों में पड़ गए। वो तो रोएंगे सो रोएंगे, वो तो द वर्स्ट केस है। लेकिन आप सोचिए कि दूसरी तरफ जो लोग दुनिया के सही काम कर रहे हैं लेकिन अल्लाह से दूर है। मसलन आप देखिए कि न्यूटन, आपने उनका नाम सुना होगा, 30 साल तक अपने काम को दिए, इतना बड़ा लॉ ऑफ ग्रेविटी उसकी वजह से डिस्कवर हुआ, लेकिन आखिरत में उसको क्या मिलेगा अगर वो कुफर पे था? तो क्या वैल्यू है लॉ ऑफ ग्रेविटी की कयामत के मैदान में खड़े होकर? कुछ भी नहीं है। तो जब हम अपनी कोशिशों का रुख सिर्फ दुनिया में देखें और दुनिया को इतना वक्त दे दें कि नमाज का वक्त चला जाए, आखिरत खराब हो जाए, तो इस आयत को याद कर लें, अपने लिए कसूर लिखें, जिस चीज की जितनी वर्थ है उस पे उतना इन्वेस्ट करूंगी, टाइम मनी एफर्ट्स एंड स्किल्स। मैं एक मिसाल के लिए तकाबुल करूंगी, हालांकि मुझे खुद पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज, और जितना मुसलमान लोग ज्यादा पढ़ेंगे मेरा ईमान है कि उतनी दुनिया पे रहेंगे। लेकिन सिर्फ एक तकाबुल करते हैं, अपना ले लीजिए, अपने बच्चों का ले लें, एनी वन, कोई भी, सब सेम है। बचपन से लेके मॉन्टिसरी से लेकर मास्टर्स किया, अब मास्टर्स को आप किसी भी जगह का स्पेशलाइजेशन कह लें, डॉक्टर इंजीनियर पायलट, कितना वक्त लगा, कितनी एफर्ट्स लगी, कितने दिन की नींद कुर्बान की, कितना वक्त लगा, और कितनी उसके अंदर मेरी तरफ से वो फिक्र और गम की सूरत में गई जो हर साल के इम्तिहान और पेपर था उसको लिख लें। आ जाके ये करके देखिएगा, आपने अपने बच्चों से पैसे लेने तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लिख के तो देखें भला। ऐसी रफली मॉन्टिसरी में गया तो क्या फीस थी लिख लें, कितने दिन जाता था लिख लें, सुबह कितने बजे उठती थी लिख लें। इसी तरह हर साल अगले अगले साल, आपका बच्चा अगर 18 साल की बेटी है या 20 साल का, तो 20 सालों के फिगर्स लिखना कोई बिग डील नहीं है, रफली कर लीजिए। और आप उसको जमा करें, आपकी चीखें निकल जाएंगी। और उस ग्रेड तक पहुंचने के बाद कई बच्चे अपना करियर छोड़ देते हैं, इतना कुछ करने के बाद इस उम्र पे आके बच्चे माँ बाप से बागी हो चुके होते हैं। लाखों करोड़ों लगा दिया अपने और उनको कुछ मिला नहीं मिला, मिल भी जाए तो बाज दफा माँ बाप को उससे खैर नहीं मिलती। अब आप इसके पैरेलल दूसरी तरफ लिखिए, ये तालीम जिसकी वर्थ या जिसकी एक्सपायरेशन मैक्सिमम क्या दिन है। हालांकि मुझे पता है मैक्सिमम वहां तक कोई चलता नहीं है, लोग तो आपको 40s 50s में रिटायर करके बिठा देंगे कि आपकी रिटायरमेंट हो गई, लेकिन मैक्सिमम डे ऑफ दिस डिग्री जो दुनिया में मैंने हासिल किया आज तक, वो मेरा डेथ बेड है। कब्र के अंदर मेरी डिग्री का कोई काम नहीं है, कब्र से बाहर है। ठीक है, अगर उसके साथ एथिक्स है, अच्छे अखलाक है, दुनिया को नफा दिया है, तो वो नेकियों की सूरत में मेरी कब्र में जाएंगे, लेकिन मेरी मास्टर्स की डिग्री पे कब्र में जाकर मुझे कोई जॉब नहीं देने वाला। लेकिन जिस डिग्री का लाजमी सवाल कब्र में जाते ही होना है, वो तीन सवाल जो कब्र के असूले सलासा की सूरत में फंडामेंटल्स ऑफ द बिलीफ या इस्लाम के बेसिक फंडामेंटल्स हैं, उसका मामला कहाँ चलता है। हम सब अपने आप से पूछें, क्या हमारी कोशिशों का रुख ठीक है? हमसे मुराद उम्मते मुस्लिमा, हम अपने और अपने बच्चों की दुनियावी तालीम और कैरियर बिल्डिंग को अगर सब कुछ समझते हैं, और वही कामयाबी है वही नाकामी है हमारी नजर में, वही खुश करती है वही दुखी करती है, तो हम धोखे में। 20 साल का होने पे अगर बच्चे को दीन की बेसिक्स नहीं पता चली, कुरान पूरा नहीं सीखा, नमाजें अभी पक्की नहीं है, लिबास हिजाब का मामला बड़ा वीक है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि कुल हल नुनब्बियुकुम बिल अखसरीन आमाल, अल्लाह ना करे कि हम मुझसे इनकी ऐसी हसरत का शिकार हो। तो आज कुछ करना है, सबको भूल के अपने ऊपर आ जाए। अपनी उम्र लिखें, कितने साल की हैं आप, बचपन की हर जो आखिरी छोटी सी बात याद है वो लिख लें। कहाँ रहती थी, किधर थी, किस स्कूल में, किधर कॉलेज था, अब्बू छोड़ने जाते थे, ये था, टांगे पे जाते थे, रिक्शा लगा था, लिख लें। उससे लेके लम्हा लम्हा अपने आज भी आई, आज की डेट क्या है, 3 जुलाई है ना, एक लंबा जर्नी होगा आपके पास, 30, 40, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स की, 70 भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम। अब आप इन सारी कोशिशों को लिख के बताइए, बचपन से लेके आज तक जो मेरे साथ हुआ, इसमें अल्लाह की इस किताब का कितना हिस्सा। सिर्फ वही खाला जी और मौलवी साहब बचपन से जिनसे कुरान पढ़ा और उसके बाद उनको सुना के आमीन की, फिर अम्मी के कहने पे पढ़ लिया, या अब रोज आदतन पढ़ते हैं। इतनी इंटेलेक्चुअल होने के बावजूद मुझे इस कुरान की समझ कितनी आती है। फिर इंसान को अपनी बर्थ पता चलती है, फिर साथ ही खुद से नियत करें कि अल्लाह अगर मैंने 20 25 30 35 साल इस दुनिया के लिए लगाए, आप मुझे इस किताब को सीखना है, वरना कब्र के अंदर हसरत होगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने अक्सर बोला, और अक्सर आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री है, अफ़लु तब्दील, सबसे ज्यादा खसारा। बैंकरप्सी तो बहुत छोटा लफ्ज है, सबसे बड़ा बैंकरप्ट वो होगा कि जिसकी सारी कोशिशें इस दुनिया के साथ खत्म और आखिरत में खाली हाथ है। और कहते रहे कि हम बहुत अच्छे काम करते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत बिजी हैं, हम बहुत मसरूफ हैं। मैं सोचती हूँ जिसके पास रमजान में कुरान सीखने का वक्त नहीं है, कब होगा? जो रोजा रख के इफ्तारी से 5 10 मिनट पहले खामोशी से बैठ के जिक्र और दुआ नहीं कर सकता, फिर भी बोल रहा है और खा रहा है और लोगों से बातें कर रहा है, उसको कहाँ खुशू मिलना है, उसकी इबादत ने उसका क्या बिगाड़ना है। दुख होता है जब हम उम्मत मुस्लिमा को इस तरह के हालात का शिकार देखते हैं, उसकी वजह सिर्फ यह है कि इस किताब की वैल्यू नहीं पता। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमा दे और हम अपने कामों को ठीक कर लें। अगर इस हालत में दुनिया से चलेंगे तो क्या होगा? उलाइकल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम वलिक़ाइही फहबितत आमालुहुम फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयात को मानने से इनकार किया और इसके हुजूर पेशी का यकीन न किया, इसलिए इनके सारे आमाल जाया हो गए। सोचिए, सारे टेस्ट पास कर लिए आपने और आखिरी में फेल हो गए, तो ड्राइविंग कर सकते? सारे एग्जाम पास किए लेकिन आप लास्ट ईयर में फेल हो गए, तो क्या आप मेडिकल डॉक्टर बन गए? नहीं होंगे। एंड बहुत अहम होता है, हदीस में भी आता है कि चीजें आमाल के इंजाम के साथ है। अगर किसी चीज का एंड अच्छा है तो समझिए कि इंशाल्लाह वो अच्छी ही थी, लेकिन आज हम अपने एंड को सोचें, सारी जिंदगी सक्सेसफुल हो गए लेकिन हमारा एंड अच्छा ना हुआ तो क्या बनेगा। फरमाया क्यामत के रोज हम उन्हें कोई वजन ना देंगे, इनकी जजा जहन्नम है इस कुफर के बदले जो उन्होंने किया और इस मजाक की पादाश में जो वो मेरी आयात और मेरे रसूलों के साथ करते रहे। अलबत्ता वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, इनकी मेजबानी के लिए फिरदौस के बागात होंगे जिनमें वो हमेशा रहेंगे और कभी इससे निकलकर कहीं जाने को इनका जी न चाहेगा। सच ये इस दुनिया से जाने को दिल करता है? सच बताएं, बिस्तर पे भी पड़े किसी को पूछ लीजिए, सुनाओ भाई क्या हुआ, जाना है दुनिया में? कहते नहीं अभी नहीं जाना। तो जन्नत में जाकर कौन होगा? बाद लोग कहते हैं हाय जन्नत में जाके बोर नहीं होंगे, वहां बोर होने का टाइम ही नहीं होगा, वहां एक दफा बस चले जाएं। हम नहीं जाएं, वी डोंट वॉन्ट टू मूव। किसी भी घर में आप गए हो ना, आप शुरू में ये कहते हैं मैंने इधर से मूव नहीं होना, कुछ साल बाद दूसरे भी कोई अच्छी चीज नजर आती है, फिर और अच्छा इलाका होता है, कहते ये इलाका अच्छा नहीं रहा, उधर जाना है। जन्नत में जाकर आप कभी मूव नहीं होंगे, आपका दिल हर दिन खुश होगा, आपको वो जन्नत हर दिन पिछले दिन से वो अच्छी लगेगी। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें एक दफा उस जन्नत में डाल दे, हम भी कहां निकलना चाहेंगे। خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي। ऐ नबी कहो अगर समंदर मेरे रब की बातें लिखने के लिए स्याही बन जाए तो वो खत्म हो जाए मगर मेरे रब की बातें खत्म ना हो, बल्कि अगर इतनी ही रोशनाई हम और भी ले आए तो वो भी किफायत ना करे। सच अल्लाह की बातें खत्म होती हैं, ये कुरान पढ़ते हुए सच्ची बात है, भाग दौड़ के अगर वक्त का एहसास ना हो तो एक एक आयत की बात ही ना कभी खत्म हो। तो कहां अल्लाह की तारीफें, उसके गुण, उसकी नेमतें, वो कभी खत्म हो सकते हैं? जैसे अल्लाह की जात किसी जगह समाती नहीं है ना, तो उसकी नेमतें भी नहीं समाती। दो दफा तो पढ़ चुके हैं वाइन तो दो नेमत अल्लाह ला तुहसुहा, उसकी नेमतें भी नहीं पूरी की होती, उसकी सिफतें, उसकी तारीफें, उसकी बातें ये कभी खत्म नहीं होती। तो हमें उस रब को पाना है जिसने उसको पा लिया, हकीकत है कि अल्लाह उसको भी अनलिमिटेड चीजें अता करेगा। और जो लोग जिन चीजों के पीछे बावले होने लगते हैं वो अल्लाह को पाने वाले को खुद ब खुद मिल जाती हैं। और अगली आयत में फिर नबी सल्लम का मुकाम बताया गया, قل إنما أنا بشر مثلكم, ऐ नबी कह दीजिए मैं तो एक इंसान हूं बस तुम ही जैसा, यानी बशर हूं, फरिश्ता नहीं हूं। इन फरिश्ता होता तो हम कहते हैं अल्लाह के नबी तो फरिश्ते थे जी, वो तो पांच की बजाय सातवीं नमाजें पढ़ लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कहा इंसान, सारी इंसानी जरूरियात नबी को लगती थी, आप थकते भी थे, आपको भूख भी लगती थी, आपको नींद भी आती थी, आपको वॉशरूम में जाने की हाजत भी होती थी। एक फर्क है आप में और उम्मतियों में, और वो क्या है? युहा इलैया, मेरी तरफ वही की जाती है। ये किसी इंसान का और दावा नहीं आज उनकी उम्मत में से हो सकता कि हाँ मेरे पास भी वही आती है। वही का खुलासा क्या था? कि तुम्हारा रब बस एक ही खुदा है, बस जो कोई अपने रब की मुलाकात का उम्मीदवार हो, पूछिए खुद से, हूं इंशाल्लाह है उम्मीदवार, तो फिर क्या करें? फल या मला मलन सालेहन, तो फिर चाहिए कि नेक अमल करें। और वला युश्रिक भी इबादत रब्बिही अहदा, अपने रब की इबादत में किसी और को शरीक ना करें। कौन रब की इबादत में शरीक करता है और किसको? क्या हम कहते हैं कि हम शैतान के लिए दो नफिल पढ़ रहे हैं, आज का रोजा बराए शैतान? नहीं, इबादत में शिरकत रियाकारी है, दिखावा, जस्ट लाइक टू शो ऑफ, लोग मुझे नेक समझें, लोग मुझे अच्छा समझें, लोग तहज्जुद गुजार समझें। तो याद रखिए, जो चीज आप दूसरों को दिखाने के लिए देंगे अल्लाह को, अल्लाह वो नहीं रखेगा। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आप देखिए कि आपके घर कोई सिस्टर आई और उनके हाथ में गिफ्ट बैग्स हैं। अब आप समझिए कि वो आपके लिए लेके आई हैं, आप उनके हाथ से पकड़ कहते अरे क्या तकल्लुफ किया, पकड़ भी रहे होते हैं, कहते क्या जरूरत थी, और साथ ही कहते हैं पकड़ो। खुद शादियों में जाने से पहले बड़ा सा थैला लेके जाते हैं कि लिफाफे पकड़ेंगे लोगों से, फिर हाथ लिफाफा पकड़ते वक्त क्या कहते हैं, क्या जरूरत थी देने की, फिर साथ ही पकड़ के शुक्रिया इसको डाल देते हैं ना, ये इंसानों की आदत है। और जब उन्होंने उनके हाथ से थैली पकड़ ली, मिसाल है आपने रख ली, बाद में आपको उनके साथ आने वाली कोई सिस्टर बताया कि वैसे वो आपके लिए नहीं लाई थी, उन्होंने तो आगे कहीं और जाना था, तो उनके हाथ में था वो थैला, तो उन्होंने कहा कि अच्छा अब आप मुझे अपना सच बताएं, आपको शर्म आएगी, खुशी होगी, क्या लगेगा? कभी भी नहीं लेंगे आप, उसको वापस करेंगी, आप कहेंगे जो आप मेरे लिए लाई नहीं मैं आपसे क्यों लूं? तो आप पर सोचिए, अल्लाह नहीं कहेगा, जब तूने मेरे लिए किया ही नहीं तो मैं तुमसे लूं क्यों? जो लोगों की नजरों में बड़ा बनना तो बन जाओ, ये बात कही तो मुझे एक बचपन की सुनी हुई बात याद आ गई। पहले दौर में सीधे साधे लोग होते थे, तो किसी घर में हम सब जो भी बच्चे थे, तो कोई मेहमान आए तो उनके हाथों में केले थे थैलों में ना, उन्होंने ला के कोने में रख दिए। खाना खाया पिया चले गए, अब मेहमान बाहर गए तो बच्चे केलों पे टूट पड़े। अब केले और अकेले तो होते ही नहीं, वो खा रहे हैं पी रहे। 2-4-5 मिनट गुजरे तो दरवाजे की नॉक हुआ, कहा वो मैं अपना एक बैग इधर भूल गई। आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा। तो ऐसे मामले हो जाते हैं ना जिंदगी में, लेकिन अल्लाह के साथ ऐसा मामला भूल के भी नहीं करना। अपने आप को 3 सेकंड दें, गौर करें और सोचें। कोई भी नेकी, देखिए नेकियों में से भी शैतान चोरियां कर जाता है। कोई नेकी करते वक्त अगर एक लम्हे के लिए किसी दूसरे को दिखाना मकसूद है ना, ये देख ले, तो अल्लाह कहते उसको दिखा लो। जिस खाने को पकाने के दौरान बार बार खोलें, हवा लगाएं, गर्म, पहले चूल्हा खोलें, बंद करें, फिर ढक्कन खोलें, पुलाव पका रही हैं, उसको देख रही हैं, वो चावल नहीं गलते, खराब हो जाते हैं। कहते हैं हवा लग गई यार, दाल नहीं गल रही, कभी ठंडी होगी कभी गर्म। बस नेकी करें, डम कर दे, दम पे दे, वो दम पुख्त कीमे की तरह बगैर किसी बहुत मेहनत के इतनी लजीज किस्म की नेकी बन के क्यामत के दिन आएगी। तो आप देखिए कि अब सूरत कहफ कितने बड़े बड़े सबक देकर हमें हर जुमे को जाती है। अगर हमें इसका तर्जमा समझ आए और हम इसके साथ पढ़ें तो कितना अच्छा लगे। और इसकी सिर्फ तफसीर भी आप सुन सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना कुछ है। इस पर एक पावर पॉइंट हम अक्सर भेजा करते हैं, इंशाल्लाह आपको भी भेज देंगे, कि जिसमें फितनों की हकीकत है और आजमाइशों की हकीकत है।